جی آیت نمبر 12، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی کی چمک خوف سے بھی اور امید سے بھی. پھر وینشئ السحاب الثقال، اور وہ اٹھاتا ہے بڑے بوجھل بادل. پھر کیا ہوتا ہے اسی کے ساتھ اگلی آیت 13، ویسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفتہ، اور تسبیح کرتی ہے کڑک اس کی حمد کے ساتھ اور فرشتے بھی اس کے خوف سے. اور وَيُرْسِلُ السَّوَائِكَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہ بھیجتا ہے کڑک دار بجلیاں، پھر وہ گرا دیتا ہے انہیں جس پر چاہتا ہے. پھر یہ سب کچھ دیکھتے سنتے بھی، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اس وقت اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے. ان دو آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان پہ ہونے والی بڑی بڑی تبدیلیوں کا تذکرہ کر دیا کہ کس طرح سے جب بجلی چمکتی ہے تو خوف بھی آتا ہے اور امید بھی آتا ہے. یہاں سے ایک بات اپنے عمل کی سیکھ لیجئے کہ فطرت کا اصول ہے کہ خوشی کے ساتھ غم اور غم کے ساتھ خوشی، امید کے ساتھ نا امیدی اور نا امیدی کے ساتھ امید. اسی طرح ایمان بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، الایمان بین الخوف والرجا. ایک صحابی کے ڈیتھ بیڈ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ نے کہا کہ ساتھی تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کہنے لگے اپنے گناہوں کا سوچتا ہوں تو بہت ڈر لگ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی امید بھی لگ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ انت مومن، بے شک تم مومن ہو. تو حقیقت یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے بے نیاز ہو جانا اور کہنا کہ اللہ معاف کر دے گا، یہ بھی ایمان کی کمی کی دلیل ہے. اور سب کام اچھے کر کے اپنی اوقات کے مطابق جو کر سکیں، پھر کہنا کہ ہمیں کہاں اللہ نے بخشنا ہے، ہم کیسے یہ ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی ایمان کا نقص ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات کی ان مثالوں سے خبر دیتے ہیں کہ تم کام کرتے رہو، حالات جیسے بھی ہوں چلتا جائے گا. آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ حالات بالکل غیر متوقع ہو جاتے ہیں، انپریڈکٹیبل. آپ کچھ اور سوچ رہے تھے، کچھ اور ہو گیا. آپ سوچ رہے تھے بارش ہوگی، پھر نہیں ہوئی. اور آپ آج ویدر چینل سے دیکھ رہے تھے کہ دھوپ نکلے گی، لیکن اتنی بارش ہوئی کہ چھتری کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ پریشان ہوئے. اللہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے، کل کیا ہونا ہے اس کی فکر چھوڑو، کام کرو، کام کرو. زندگی تضادات کا مجموعہ ہے، کانٹراڈکشن. ہر حال میں کام کرنا. ہم بہت سارے کام اپنے حالات کا شکوہ کرتے ہوئے نہیں کرتے، کبھی کہتے ہیں یہ وجہ، کبھی کہتے ہیں وہ وجہ. حالانکہ اللہ نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا، انگریزوں نے بھی کہہ دیا کہ ویئر دیئر از اے ول دیئر از اے وے. جب دل میں نیت ہو جاتی نا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے تو یہ کام ہوگا. تو موسم جیسا بھی ہو کام کرنا ہے. زندگی کا موسم ہو، گھر کا موسم ہو، شادی، خاندان، برادری، خوشی، غم، کام کرتے جاؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈانٹ دی ہے کہ وہ یوسف بھی ہو راد. یہاں دیکھیے گا کہ راد کے تسبیح کرنے کی بات ہے، تو راد ہے یہ وہ لفظ جس پہ سورت کا نام بھی راد ہے. اصل میں یہ گرج اور چمک، اصل میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کا ایک انداز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کڑک کرتی ہے کیسے؟ یہ جو آواز آتی ہے نا ہمیں، شور کی آواز ہوتی ہے، اصل میں آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ترانے بج رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے من خیفتی اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ جب بجلی چمکے تو یہ آیت پڑھنی چاہیے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. اسی طرح ایک مسنون دعا بھی ہے کہ اللہم لا تقتل نبی غضبی کا ولا تہلک نبی عذابی کا وعافنا قبل ذالک. اے اللہ، ہمیں اپنے غضب کے ساتھ نہ مارنا اور اپنے غصے سے ہلاک نہ کرنا، اور اگر تیرا ارادہ ہے ایسا کسی کے ساتھ تو ہمیں اس سے پہلے ہی عافیت دے دینا. ہمیں اللہ تعالیٰ ایک پیغام دیتے ہیں اس کڑک کی صورت میں کہ جب کڑکتے حالات میں بجلی اور فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں तो तुम हालात के बदलते ही नमाज क्यों छोड़ देते हो? हालात जैसे भी हों, अल्लाह को नहीं छोड़ना। वयुरसिलुस्सवाइक, वो फिर कड़कदार बिजलियां भेजता है। सवाइक सायकत उनकी जमा, वो बिजली जो गिरकर भस्म कर दे, आग लग जाती है ना बस बिजलियों से। फयुसीबु बिहा मन यशा, फिर जिसको चाहता है पहुंचा देता है। यानी वो बिजली हर एक पे नहीं गिरती, कुछ पे गिरती है कुछ पे नहीं गिरती। मुराद है यहाँ अचानक पकड़। वहुम जो जादिलूना फिल्ला, वो अल्लाह के मामले में झगड़े कर रहे होते हैं, बैसे कर रहे होते हैं। क्या झगड़े होते हैं उनके अल्लाह के मामले में? अल्लाह है भी कि नहीं, फिर अल्लाह कैसा है? क्या हमारे तसव्वुर के मुताबिक है? क्या अल्लाह का कोई कंट्रोल है दुनिया में? मुराद है शिर्क और अल्लाह की सिफात को ना मानना। तो अल्लाह कहते हैं कि जिस वक्त ये शिर्किया बातें कर रहे होते हैं, करीब है कि आसमान से बिजली गिरे और इनको जला के भस्म कर दे, क्योंकि वहुवा शदीदुल मिहाल, क्योंकि इसकी पकड़ बड़ी सख्त है। मिहाल का लफ्ज़ हॉल से है, पीछे भी पढ़ा हमने, मा हौलहु, यानी अल्लाह की पकड़ इतनी सख्त है। ताकत को भी मिहाल कहते हैं, पकड़ने वाला, खुफिया तदबीरें करने वाला, मुआखजा करने वाला, कुव्वत से पकड़ने वाला। मतलब ये है कि ना जाए इसके तहम्मुल पर कि बेढब है पकड़ उसकी, डर इसकी देरगीरी से कि सख्त है इंतकाम उसका। बस दफा हम गुनाह करते ही रहते हैं और हमें कुछ नहीं होता, इससे हम चौड़ होने लगते हैं। हम कहते हैं देखो अगर अल्लाह नाराज होता तो ये हो जाता वो हो जाता, चूंकि कुछ नहीं हुआ तो फिर मान लो कि अल्लाह हमसे खुश है। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें थोड़ी मोहलत इसलिए दे रहा हूं कि जब पकड़ूंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगी। लिहाजा क्या करो, लहू दावतुल हक, इसी का पुकारना हक है। एक हस्ती है, देखा आपने पूरे सबक में अल्लाह की कितनी अनयूजल चीजों का तذکرہ गुजरा, जमीन और आसमान से लेके माँ के पेट के अंदर की तब्दीलियों का तذکرہ किया। कहा जब इतना कुछ उसके हाथ में है तो फिर उसी को पुकारो। और इसके भी कई मानी है, पुकार उसी की तरफ हक है या उसी को पुकारना। अल्लाह ही एक ऐसी हस्ती है जिसको पुकारा जाए, जिससे दुआ की जाए। वही है जो तुम्हारी पुकार को सुनता है, तुम्हारी हाजत को जानता है, तुम्हारी हाजतों को पूरा करने पे कादिर भी वही है। फिर उसी को पुकारो। उसको छोड़कर अगर किसी को भी पुकारते हो, कोई फरिश्ता, वली, नबी, पैगंबर, तुम्हारी पुकार और फरियाद को वो अगर सुन भी लेता है, लेकिन ये याद रखो कि वल्लज़ीन यदून मिन दूनिही, और जिनको ये लोग पुकार रहे हैं उसके सिवा, ला यस्तजीबून लहुम बिशय, वो इनकी दुआ को किसी तरह भी कबूल नहीं करते। ये बहस छोड़ दो कि मुर्दे सुनते हैं कि नहीं सुनते, ये नतीजा ले लो कि वो सुन भी लें तो आगे से जवाब नहीं देते। कभी आया कभी किसी कब्र से जवाब? किसी साहिब कब्र ने तुम्हें दिया? और मिन दूनी में सब आ गए, पैगंबर, सहाबा, बुजुर्ग, बुत वाले, कब्र, सब कुछ। अल्लाह ताला कहते हैं कैसे लोगों से मांगना, यानी गैर अल्लाह से मांगना कैसे है, बड़ी ही खूबसूरत मिसाल है। इल्ला, सिवाय इसके नहीं, यानी मगर, कबासित इन कफ़ई ही इलल माई, जैसे कोई फैला दे अपने दोनों हाथ पानी की तरफ, ताकि लियबलुगा फाहू, ताकि वो पहुंच जाए उसके मुंह तक। यबलुगा तो समझ आ रहा है ना, बलगा। फाह किसको कहते हैं? माउथ को। इसी से लफ्ज अफवाह भी है, जो फैलती है, मुंह से ही चलती है। वमा हुवा बिबालिगे ही, वो तो उसके हाथ तक नहीं पहुंचने वाला, वो तो इसके मुंह तक नहीं पहुंचने वाला। मुशरिक की मिसाल या गैर अल्लाह से मांगने वाला, किसी कब्र पे खड़ा मांगने वाला, उसकी मिसाल अल्लाह ताला की निगाहों में इधर क्या है कि एक शख्स पानी के पास जाए और पानी को देखकर कहे कि ये पानी मेरे मुंह में आ जाए। होगा? खुले हाथों से कभी पानी लिया नहीं, हो सकता ना। कबासित, बासित ये देखिए ना, जैसे हाथ खुला हुआ है। पानी अगर आप टैप से भी लेते हैं तो कैसे लेते हैं? ये देखिए, हाथ को बंद करके लेते हैं ना। तो अल्लाह कहते हैं खुले हाथों से कोई पानी लेना चाहे और उसको मुंह तक पहुंचाए, ये नहीं हो सकता। इसी तरह से वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी दलाल, काफिरों की पुकार भी इसी तरफ अकारत जाती है। मतलब क्या है कि अल्लाह के सिवा दूसरे को पुकारना ऐसे ही है जैसे खुले हाथ से पानी पीने की कोशिश करना। कुछ हाथ नहीं आएगा, किसी समंदर के किनारे भी खड़े हैं ये कुछ कर रहे हैं तो भी कुछ फायदा नहीं होगा। ऐसी पुकारें कहाँ है, फी दलाल, टारगेट पर नहीं लगती ये दुआएं। गैर अल्लाह से मांगना अपने आप को डिट्रैक्ट करना है, रास्ते में रुक जाती है। सारा दिन कोई समंदर के किनारे खड़ा रहे या बैठा रहे और पानी को पुकार के मेरी हथेली पर आ जाओ, मेरी हथेली पर आ जाओ, कभी भी पानी नहीं आएगा। इसी तरह कब्रों पे बैठे हुए लोग भी अपने आप को जाया कर रहे हैं। अल्लाह कह रहे छोड़ो, बेचारे कब्र में चले गए, मनो मट्टी में दबे, लोगों ने उनको बेरी के पत्तों से गुसल दिया, सफेद चादरों में लपेटा, वो कुछ ना कर सके। सोचिए ना, सारे मराहल जो किसी के मरने से लेके दफनाने तक है, ऐसे वक्त में तो वो बुजुर्ग और कब्र वाला कुछ ना कर सका, और कब्र में जाते ही वो मुख्तारे कुल हो गया। कितनी बेवकूफी की बात है। कुछ कर सकता कब्र वाला तो सबसे पहले अपनी मट्टी झाड़ के कब्र से तो बाहर निकले। तो अल्लाह कहते हैं इन मजबूरों को बुलाने की बजाय किसको पुकारो, आयत 15, वाले लाही यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्ध, अल्लाह ही को सजदा करता है हर एक जो आसमानों जमीन में है, चाहे तौम व करहन, खुशी से करे या ना खुशी से करे। तौ से ही लफ्ज इतात है, करहन से ही लफ्ज कराहत है, यानी विलिंगली और अनविलिंगली। सब तो अल्लाह को करते हैं, तौन कौन सजदा करता है अल्लाह को, मोमिन। करहन कौन करता है, मुनाफिक। मुनाफिक ना खुशी से करता है। चलो ना झुके, वज़िलालुहुम बिलगुदुव्वि वल आसाल, और इनके साए भी सुबह शाम इसी को सजदा करते हैं, यानी जो खुद नहीं भी झुकते उनका साया तो जमीन पे झुकता है। क्या बता दिया कि अल्लाह को जब तुमने अल्लाह माना है तो मान लीजिए। आप देखिए कि लफ्ज इलाह आया ना इस आयत में, इसीलिए अगली आयत में कहा कुल मर रब्बुस समावाति वल अर्द, इनसे पूछो कौन है आसमान और जमीन का मालिक। कोई जवाब ना मिले तो कह दो कुलिल्लाह, अल्लाह ही है। लिहाजा कुल अफत्तखस तुम मिन दूनी मौलिया, क्या तुमने इनको छोड़कर ऐसे हमायती बना लिए जो ला यमलिकून अली अनफुसिहिम नफ़ वला दर्रा, जो खुद अपने लिए भी किसी नफे और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। अल्लाह को मुख्तारे कुल को छोड़कर इतने कमजोरों को मानते हो। कुल हल यस्तविल अमा वल बसीर, बड़ी मारूफ आयत है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इनसे पूछो क्या बराबर है अंधा और देखने वाला, अम हल तस्तवी जुलुमात वन नूर, क्या बराबर है अंधेरे और रोशनी। यहाँ आमा कौन है, मुशरिक, गैर अल्लाह से मांगने वाला। बसीर कौन है, मोमिन। जुलुमात क्या है, कुफर के अंधेरे, और नूर क्या है, तौहीद के रोशनी। अम जालू लिल्लाहि शुरका खलकू, क्या उन्होंने अल्लाह के ऐसे शरीक बना लिए हैं जिन्होंने तख्लीक की है, का खल की ही उसकी तख्लीक की तरह की। इस वजह से फतशाबहल खल्कु अलैहिम, तो ये तख्लीक इन पर मुश्तबे हो गई है, यानी क्या हो गया इन मुशरिकों को, इनको गलती लग रही है। क्या इनके माबूदों ने भी कोई ऐसी मखलूक पैदा की है जिसकी वजह से इनको गलती लग रही है कि अल्लाह को रब माने या इनको माने, अल्लाह की माने या इनकी माने। तो इनको यकीन दिला दो कुलिल्लाहु खालिकु कुल्ली शयइन, कह दीजिए कि अल्लाह ही खालिक है हर चीज का। वहुवल वाहिदुल कहार, वो है यकता और सब पर हावी। लफ्ज इलाह की तकरार है इन आखिरी 3 आयतों में, तो नोट कर लीजिए कि इलाह के अंदर क्या कुछ आता है। इलाह जब हम कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो लफ्ज इलाह में खालिक पैदा करने वाला, राजिक रिस्क देने वाला, मालिक मालिक मलकियत रखने वाला, हाकिम माबूद हुक्म देने वाला, हाजित रवा जरूरतों को पूरी करने वाला, और मुश्किल कुशा मुश्किलों को खोलने वाला। ये 6 चीजें लफ्ज इलाह में आती हैं। कब से मैं इंतजार कर रही थी शायद का कि आपको नोट करा दूंगी कि जब हम कहते हैं ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हम क्या कहते हैं, ला खालिक इल्लल्लाह, ला माबूद इल्लल्लाह, ला राज़िक इल्लल्लाह, ला हाजत रवा इल्लल्लाह, ला मालिक इल्लल्लाह, ला मुश्किल कुशा इल्लल्लाह। ये सारी सिफात जमा होती है ना, फिर रब बनता है। वरना तो आपको लगता है नहीं कि अल्लाह का नाम बस एक ऐसे ही एक बस कमोडिटी बन के रह जाती है, उसमें तो हमें कुछ नहीं और मिलता। बस लोगों ने सोचा कि अल्लाह के लिए बस मसल्ले के ऊपर टकरे मारो और बाकी सारे नफे नुकसान लोगों से ले लो, तो अल्लाह ताला कहता है ये तुम्हारी धोख तुम्हारी भूल है। सूरत के शुरू से लेके यहाँ तक अगर आप देखें, आधे सबक में मुशरिकीने मक्का के गलत अंदाजे थे अल्लाह और उसके रसूल और उसकी किताब के बारे में, और यहाँ तक आयत 16 तक अल्लाह की सिफात थी। इस खूबसूरत जात, इस हस्ती को छोड़कर जो इस कायनात का निज़ाम चलाने वाली है, तुम अपनी मर्जी के काम करते हो। अब आखिरी आयत सबक की, जिसमें हक और बातिल का फर्क बताया गया।